लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र बच्चों और विशेष रूप से पीड़ित बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता देने हेतु आवश्यक उपाय करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसराइल के गृह युद्ध को समाप्त करने का एकमात्र उपाय फिलिस्तीन को एक अरब देश और एक यहूदी देश में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया। इसकी याद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 29 नवंबर को फिलिस्तीनी जनता के प्रति एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पुनः इस बात को दोहराया कि दो राष्ट्र समाधान अर्थात इसराइल और फिलिस्तीन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए उन्होंने दोनों पक्षों और उनके समर्थकों से शांति प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता और संप्रभुता प्राप्ति के लिए चल रहे संघर्ष में अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है। बुधवार को न्यूयॉर्क में वरिष्ठ अधिकारियों ने राजदूतों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर फिलिस्तीनी जनता के प्रति एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। ये आधिकारिक तौर पर हर वर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अपने संदेश में कहा कि इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का हल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने सबसे दुसाध्य चुनौती है। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि दो राष्ट्र के समाधान के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए उन्होंने दोनों पक्षों और उनके समर्थकों से शांति प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने की दिशा में काम करने का आह्वान भी किया। दोनों पक्षों के बीच रचनात्मक बातचीत, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों व लंबे समय से सहमत मापदंडों के पालन से यरूशलम को दोनों देशों की राजधानी के रूप में मान्यता देकर ही एक न्यायसंगत और टिकाऊ समाधान मिलेगा। महासचिव का कहना था कि सबसे पहले और सबसे बड़ी जरूरत है नेतृत्व और राजनीतिक इच्छा शक्ति की, जो नागरिक समाज और तमाम अन्य पक्ष इसराइलियों और फिलिस्तीनियों के बीच की खाई पाटने की कोशिश करते हैं उन्हें भी समर्थन देने की जरूरत है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि उनके लोगों ने 70 से अधिक वर्षों से त्रासदी और संकट झेले हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अडिग हैं। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी स्थायी पर्यवेक्षक रियाद मंसूर ने अपने संदेश में कहा कि फिलिस्तीनी लोग निराशा और असफलताओं में बिताए दशकों के बावजूद एक बहुपक्षीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान सुनिश्चित करे।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने मंगलवार 26 नवंबर को वार्षिक कार्बन अंतर रिपोर्ट जारी करते हुए यह चेतावनी दी है कि वर्ष 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों और संकल्पों को हासिल कर भी लिया गया तो भी दुनिया तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की राह पर आगे बढ़ रही है, जिसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन के और भी ज्यादा व्यापक और विनाशकारी प्रभाव होंगे। इस वार्षिक कार्बन अंतर रिपोर्ट में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मौजूदा स्तर और उनके लक्षित स्तर के बीच आकलन को सचिन गौड़ प्रस्तुत कर रहे हैं।
ये आकलन दर्शाता है कि दुनिया को तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है तो अगले एक दशक के दौरान कार्बन उत्सर्जन में हर वर्ष 7.6% की गिरावट होना जरूरी है। अगर वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होती है तो हम जलवायु प्रभावों के ज्यादा और विनाशकारी नुकसान देख रहे होंगे। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC ने भी ये अनुमान विभिन्न रिपोर्टों में पेश किए हैं। इनमें हाल के वर्षों में देखी गई गर्मी, लू, तूफान जैसे हालात शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2020 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में देश अपने जलवायु संबंधी संकल्पों पर कार्रवाई तेज करने का वायदा करेंगे। यूएन एजेंसी की रिपोर्ट में सभी देशों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए योगदान लक्ष्य 2020 तक बढ़ाने का आह्वान किया गया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी जारी की है कि वातावरण में तीन प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इससे मानवता की भविष्य के लिए खतरा पैदा हो रहा है। यूएन एजेंसी ने सरकारों से अपील की है कि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए तत्काल प्रयास किए जाने होंगे। यूएन मौसम विज्ञान एजेंसी के महासचिव पेटरी टालस ने सोमवार को बताया,
वी हैव अगेन broken records in carbon dioxide concentrations and we have already
कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता में हमने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है और हम 400 पार्ट्स प्रति मिलियन के स्तर को पहले ही पार कर चुके हैं जिसे एक गंभीर स्तर माना गया था। वर्ष 2018 में गैस की मात्रा का स्तर 407.8 पार्ट्स प्रति मिलियन मापा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले साल की वृद्धि लगभग उतनी ही थी जितनी हम औसतन पिछले 10 सालों में देखते आ रहे हैं। यूएन मौसम विज्ञान एजेंसी के प्रमुख पेटरी टालस, उन्होंने मीथेन के बढ़ते स्तर पर भी चिंता जताई। यूएन एजेंसी के बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2018 में वातावरण में मीथेन की मात्रा 1869 पार्ट्स प्रति बिलियन पहुंच गई है जो पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक अगर जलवायु नीतियों में बदलाव नहीं हुआ तो वैश्विक उत्सर्जन में बढ़ोतरी वर्ष 2030 से आगे भी जारी रहने की आशंका है।
35 साल पहले हुई भारत के भोपाल गैस त्रासदी का कुप्रभाव आज भी वहां के लोग भुगत रहे हैं। 2 दिसंबर 1984 की रात में यूनियन कार्बाइड केमिकल फैक्ट्री में बेहद जहरीली गैस का रिसाव होने से 5,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कीटनाशक फैक्ट्री के दुष्प्रभावों के कारण दूषित जल और मिट्टी ने भोपाल की कई पीढ़ियों को गरिमा और विकास के साथ जीने के उनके अधिकार को रोका है। रसायन उद्योग जगत को मानव अधिकारों का सम्मान करना होगा। संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने इस मामले में एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने भारत में भोपाल गैस त्रासदी के 35 साल पूरे होने पर रसायन निर्माताओं से अपनी जिम्मेदारी समझने और मानवाधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। यूएन के विशेष रिपोर्टर बास्कु तुनचुक ने कहा है कि स्वैच्छिक मानवाधिकार मानकों को अपनाने की प्रक्रिया में कमजोरियां निहित हैं और इसलिए मजबूत कानूनी विकल्पों की तत्काल आवश्यकता है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
खतरनाक पदार्थों व कचरे के बेहतर पर्यावरणीय प्रबंधन मामलों के लिए यूएन के विशेष रिपोर्टियर बास्कु तुनचुक ने बताया कि भोपाल की गैस त्रासदी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि कीटनाशक फैक्ट्री के दुष्प्रभावों के कारण दूषित जल और मिट्टी ने भोपाल की कई पीढ़ियों को गरिमा और विकास के साथ जीने के उनके अधिकार से रोका है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि वर्ष 2030 तक रसायन उद्योग आकार में दोगुना हो जाएगा और इस वजह से मानवाधिकारों पर उसका खासा असर होने की आशंका भी बढ़ेगी। यूएन रिपोर्टियर के मुताबिक केमिकल इंडस्ट्री की ओर से रिस्पॉन्सिबल केयर पहल को वर्ष 1986 में अपनाया गया था जिसका उद्देश्य भोपाल गैस त्रासदी के बाद रसायन निर्माताओं द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की रोकथाम करना था। लेकिन मामले दर मामले दर्शाते हैं कि रसायन उद्योग जीवन और अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में विफल रहा है और न ही वो नीतियां सही मायनों में लागू हो पाई हैं जिनका जिक्र व्यवसाय और मानवाधिकारों पर यूएन के दिशा निर्देशों में किया गया है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे जिन्हें प्रस्तुत कर रहे थे महबूब खान। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
मेरे प्यारे यीशु तू है प्रेमी दाता मेरे प्यारे यीशु तू है प्रेमी दाता सदा हमें सहारा देता तेरी जय हो प्रभु मेरे प्यारे यीशु तू है प्रेमी दाता
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। इटाली राष्ट्रीय नोटरी कोष के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को वैटिकन में संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। इस अवसर पर संत पापा ने पड़ोसी और इतिहास के प्रति जिम्मेदारी का आह्वान किया। संत पापा ने इटली के सार्वजनिक लेख्य प्रमाणकों यानी कि नोटरी प्रतिनिधियों से कहा, ऐसे सामाजिक संदर्भ में जहां मुनाफे के राजमार्ग पर प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा तेजी से बढ़ रही है, नोटरी प्रतिनिधियों से मांग की जाती है कि वे यथार्थ सेवा की भावना में अपनी भूमिका का अभ्यास करें। उन्होंने कहा, मोल भाव करने की प्रक्रिया में आपकी उपस्थिति केवल वैधता की मुहर नहीं होती, अपितु संतुलन और विचारशीलता के साथ न्याय की मुहर होती है। प्रस्तुत चुनौतियों की पृष्ठभूमि में आप लोगों की समस्याओं को सुनने के द्वारा अपने ज्ञान के प्रकाश में समाज को और अधिक मानवीय बनाने में मदद प्रदान करें। इसका अर्थ है कानून और सामाजिक आर्थिक जरूरतों के बीच मध्यस्थ बनना, जो कि एक नोटरी के लिए उचित है। उन्होंने कहा कि नोटरी से यही आशा की जाती है कि वह नियमों का सही अनुप्रयोग प्रदान करे और साथ ही चौकस रहते हुए लोगों की अपेक्षाओं, उनकी निश्चितताओं और सुरक्षा के प्रति ध्यान दें। नोटरी के दायित्वों का स्मरण दिलाकर संत पापा ने कहा, अपने कार्य क्षेत्र में अपने पेशे के अनुरूप नोटरी उन लोगों की गरिमा और अधिकारों के प्रति एक ईमानदार संवेदनशीलता का पोषण करने का प्रयास करेगा जो उससे मदद की अभिलाषा रखते हैं। वह उन सभी का बचाव करने में विफल नहीं होगा जो न्याय संगत हैं, सत्य के अपरिहार्य सिद्धांतों का पालन करते हैं तथा इस कार्य में नोटरी उदारता के गुण को दरकिनार नहीं करेगा जो पारस्परिक संबंधों का मुख्य गुण है। द्वितीय वैटिकन महासभा के गाउडियम एट स्पेस नामक विश्व पत्र को उद्धृत कर संत पापा फ्रांसिस ने कहा, हम इस तथ्य के साक्षी हैं कि एक नवीन मानवतावाद का उदय हो रहा है जिसमें सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है जो अपने भाइयों और अपने इतिहास के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है। वैटिकन में शुक्रवार को सोशल अपडेट्स नामक पत्रिका के संपादकीय कर्मचारियों ने संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। सोशल अपडेट्स इटली में मिलान के येसु धर्म समाजियों द्वारा संचालित इताली और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक, राजनैतिक और कलीसियाई मुद्दों पर गहन विश्लेषण की एक मासिक पत्रिका है जो विगत 70 वर्षों से द्रुत गति से बदलते विश्व में पाठकों का मार्गदर्शन करती आई है। संत पापा फ्रांसिस ने संपादकीय कर्मचारियों का अभिवादन किया और कहा कि उक्त मासिक पत्रिका बदलती दुनिया में पाठकों को सही दिशा के प्रति उन्मुख करने में सहायक है। उन्होंने कहा कि त्वरित परिवर्तनों के काल में यह पत्रिका विशेष रूप से खोए हुए और भ्रमित युवाओं के प्रति एक कीमती सेवा प्रस्तुत करती है। संत पापा ने कहा कि खुद को उन्मुख करने का अर्थ है यह समझना कि हम कहाँ हैं, हमारा संदर्भ बिंदु क्या है और फिर तय करना कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा, वस्तुतः यह विवेक का काम है जो हमें अपनी सामाजिक यात्रा के दौरान पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानने में मदद करता है। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानना, उसके संकेतों की व्याख्या करना और उस आवाज का अनुसरण करने का चयन करना सीखना ही सफलता की कुंजी है। संत पापा ने कहा कि हालांकि उक्त पत्रिका जैविकी, असमानता और आप्रवास से जुड़ी समस्याएं, मौजूदा राजनैतिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण की देखभाल और जन कल्याण जैसे विवादास्पद मुद्दों का विश्लेषण करती है, उसे निर्धन और हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। न्यूयॉर्क में गुरुवार को ख्रिस्तीय, इस्लाम और यहूदी धर्मों के नेताओं से गठित मानव बिरादरी संबंधी उच्च समिति ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस के समक्ष विश्व भ्रातृ दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा। वेटिकन स्थित अंतर धर्म संवाद संबंधी परम धर्म पीठी परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल आंजेल आयुजो ग्विट्सो के नेतृत्व में इसी अवसर पर उन्होंने मानव भाईचारे पर एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का भी प्रस्ताव रखा। गुरुवार को न्यूयॉर्क में कार्डिनल ग्विट्सो और न्यायाधीश मोहम्मद अब्दुल सालेम ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात कर उन्हें संत पापा फ्रांसिस और अल अजहर के ग्रैंड इमाम अहमद अल तायब का संदेश दिया। संदेश में प्रस्ताव है कि 4 फरवरी का दिन विश्व भाईचारा दिवस घोषित किया जाए, जिसमें परम धर्म पीठ, अल अजहर विश्वविद्यालयीन संगठन सहित संयुक्त राष्ट्र संघ भी शामिल रहे तथा निकट भविष्य में मानव भाईचारे पर एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाए। डॉक्टर गुतेरेस ने इस पहल की सराहना की तथा संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए काम करने के महत्व को रेखांकित किया। इस नेक पहल के कार्यान्वयन हेतु उन्होंने कथित हेट स्पीच अर्थात अभद्र भाषा और नरसंहार की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघीय महासचिव के विशेष सलाहकार डॉक्टर अदामा डियंग को भी नियुक्त किया। रोम स्थित येसु धर्म सामाजिक पत्रिका ला चिविल्ता कैथोलिका में गुरुवार को प्रकाशित एक लेख में कहा गया कि संत पापा फ्रांसिस यूरोप में आप्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार तथा उनके विरुद्ध बातें सुनकर बेहद हैरान हैं। गुरुवार 5 दिसंबर को प्रकाशित ला चिविल्ता कैथोलिका के संस्करण में लिखित लेख के अनुसार थाईलैंड में अपनी यात्रा के दौरान संत पापा ने कहा था, मुझे मानना पड़ेगा कि यूरोप में सीमाओं के बारे में कही जा रही कुछ एक बातों से मैं हैरान हूं। उन्होंने कहा, लोक लुभावन शक्ति बढ़ रही है। 22 नवंबर की भेंट वार्ता में संत पापा ने कहा, भूमध्य सागर को कब्रिस्तान में बदल दिया गया है। लीबिया के कुछ हिरासत केंद्रों की कुख्यात क्रूरता मेरे दिल को छू जाती है। अन्य हिस्सों में दीवारें हैं जो बच्चों को माता पिता से अलग कर रही हैं। संत पापा ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि आप्रवास की समस्याओं को एक रक्षात्मक मानसिकता द्वारा संयोजित किया जाता है जो भय की स्थिति उत्पन्न करता तथा लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि आप केवल सीमाओं को मजबूत करके खुद का बचाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा, यही कारण है कि आप्रवासियों और शरणार्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता तथा मानव व्यक्ति समझने के बजाय उन्हें फेंकने वाला कूड़ा समझ लिया जाता है। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि शरणार्थियों की समस्या हमेशा से मौजूद रही है, लेकिन आज यह सामाजिक मतभेद, भुखमरी, राजनीतिक तनाव और विशेष रूप से युद्ध के कारण और अधिक उजागर हुई है। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।